ओम शांति। कुमार जीवन एक अग्नि परीक्षा। कुमार जीवन एक अग्नि परीक्षा। इस विषय पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पश्चिम जगत के किसी एक लेखक ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, जिस कविता में उसने लिखा कि मुझे एक दिन एक स्वप्न दिखा। उस स्वप्न में उसने देखा कि वो समुद्र के किनारे पर चल रहा है, और उसका वो चलना जो था वो जीवन की यात्रा थी। वो किसी किनारे पर नहीं, परंतु जीवन की जो बचपन से अब तक की यात्रा है वो यात्रा थी। और वो चलते चलते देख रहा था कि भगवान सदैव उसके साथ है, क्योंकि आगे चलने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता था तो रेत पर उसके अपने दो चिन्ह पैरों के, और साथ साथ दूसरे और चिन्ह दो, और उसे ये विश्वास था कि भगवान मेरे साथ साथ चल रहा है, क्योंकि ये जीवन की यात्रा थी बचपन से अब तक की। और उसे बहुत खुशी हो रही थी कि भगवान उसके साथ साथ है। परंतु उसने एक बात और देखी, जब जब जीवन में विघ्न आए, जब जब जीवन में परिस्थिति आई, जब जब जीवन में कठिनाई मुश्किलें आई, तब तक केवल उसी के दो पैरों के पद चिन्ह थे। वो जो भगवान के चिन्ह थे वो वहां थे ही नहीं। फिर जब कुछ जब सामान्य हुआ, फिर जब जब सब ठीक हुआ, तब तब चार चिन्ह, और जब जब मुश्किल, जब जब परेशानी, जब जब विघ्न, तब तब दो ही चिन्ह। तो उसने भगवान से कहा, तुमने तो वादा किया था कि मैं निरंतर तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम साथ रहे भी, परंतु ऐसा क्यों है कि जीवन में जब जब परीक्षाएं आई, जीवन में जब जब पेपर आए, जीवन में जब जब ऑब्स्टेकल विघ्न आए, तब तुम कहां चले गए थे? तो भगवान से उसने शिकायत की, तो भगवान ने उसे उत्तर दिया, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही था। जब कोई विघ्न नहीं, परिस्थिति नहीं, तब तो मैं था ही, परंतु जब कोई विघ्न आया और जो परिस्थिति आई, और तुमने जो रेत पर दो चिन्ह देखे हैं पैरों के, वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे, क्योंकि उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर चल रहा था। तो जब जब विघ्न और परिस्थिति आएगी, उस समय एक दिव्य पुरुषार्थी आत्मा को, एक ऐसी आत्मा जिसने भगवान की श्रीमत का पालन किया है, भगवान वहां पर उसकी मदद करेगा। सूक्ष्म मदद आएगी, सूक्ष्म दुआएं काम करेगी, सूक्ष्म पुण्य का खाता जो जमा है वो काम करेगा, परमात्मा छत्र छाया बन जाएगा, और वो सारे विघ्न, वो सारी परिस्थितियां, वो सारी अग्नि परीक्षाएं, एसिड टेस्ट, लिटमस टेस्ट जीवन की सहज पार हो जाएगी, और ऐसा अनुभव होगा कि जैसे भगवान हमें अपनी गोद में उस समय लेकर चल रहा है। तो इस कुमार जीवन में भी ऐसे बहुत से पेपर्स आएंगे, ऐसी बहुत सी परीक्षाएं आएगी, ऐसी ऐसी बातें होगी कि जो फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करेगी। विकार नए नए रूप धारण करेगा, कभी स्मरण के रूप में, कभी स्पर्श के रूप में, कभी किसी की प्रशंसा के रूप में, तो कभी कामुक इच्छाओं के रूप में। और जब जब पेपर आएगा तब तब ऐसा ना हो कि हम असहाय महसूस करें, ऐसा ना हो कि हमको लगे इस समस्या से, इस परिस्थिति से, काम के इस वार से कैसे छूटे, ये ना लगे कि हमने तो सब कुछ ही कर लिया, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी विकार वहीं के वहीं हैं। ऐसी अवस्था ना आ जाए तो विघ्न आएंगे, और विघ्नों का काम है आना, और आते हैं हमें अनुभवी बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। पेपर आएंगे ताकि क्लास आगे बढ़े, परिस्थिति आएगी ताकि विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट मिले, और जो जितना पहलवान होगा, पहलवान के पास उतनी ही पहलवान होकर माया आएगी, जो जितना शक्तिशाली उसके पास माया भी शक्तिशाली होकर आएगी, जो महावीर महावीर के रूप में माया आएगी, जो जितना रुस्तम रुस्तम बनकर माया आएगी, जो जितना दबंग वैसे ही निर्भय बनकर माया आएगी, जो जैसा होगा उसके पास उसी रूप में माया आएगी, इतने सूक्ष्म रूप से आएगी कि जान ही नहीं पाएगा। परंतु यदि कोई सजग है, चौकन्ना है, अलर्ट है, अवेक है, तो माया के किसी भी वार से परास्त नहीं होगा। कुमार जीवन एक अग्नि परीक्षा है, एक अग्नि पथ है। कौन सा पथ है? अग्नि पथ। आग है जिस पर आग, इस पथ पर बहुत परीक्षाएं आएगी, बहुत प्रकार की अग्नि है। इन सभी में से आज की क्लास में हम ऐसे 7 पेपर, ऐसे 7 परीक्षाएं, ऐसी 7 अग्नि जो हरेक को आनी ही है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये पेपर मुझे नहीं आएगा, क्योंकि इन 7 परीक्षाओं से पास कर कर ही आत्मा शक्तिशाली बनेगी। और इनमें से यदि किसी एक में फेल, तो फेल। सभी में से पास होकर आगे निकल जाना है, अडोल रहना है, अचल रहना है। कमजोर यदि हुए तो माया और अटैक करेगी। और जितनी आत्माभिमानी स्थिति होगी, बाबा से जितना अधिक कनेक्शन होगा, जितना योग शक्तिशाली होगा, और जितना चिंतन और ज्ञान का मन शक्तिशाली होगा, जितनी सेवाओं में निस्वार्थ भावनाओं से की गई हुई सेवा होगी, उतना ही बल जमा होगा, और ये सारी परीक्षाओं को एक कुमार सहज पार कर जाएगा। तो ऐसी हम कुछ परीक्षाएं देखेंगे। सबसे पहली परीक्षा जो हर एक को आनी है और आएगी और आई भी है, वो है लौकिक से परीक्षा, लौकिक घर से परीक्षा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, स्वजनों की मृत्यु, अपनों की मृत्यु, अपनों की बीमारी, अपनों के रोग, अपनों की आर्थिक परिस्थिति, लौकिक घर से जो भी परिस्थितियां आए वो सभी पेपर है एक रीति से। कितना भी कोई आगे बढ़ना चाहे, परंतु यदि ऐसे कोई पेपर घर से आ जाए कि हम बढ़ ही ना पाए, घर वाले अब तक सहयोगी थे, एक दिन अचानक विरोधी हो गए, अब तक कुछ नहीं कह रहे थे, अचानक फिर कहने लगे आप शादी करो, शादी करो नहीं तो मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। ऐसे अगर घर वाले कहने लगे तो, एक कुमार था एकदम पक्का, वो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता था, परंतु उसके पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी अरेंज की, बहुत उसने विरोध किया परंतु वो नहीं माने, और शादी जिस दिन थी और उस शादी के मंडप से ही वो कुमार निकल के आ गया, नहीं करनी है, चला गया। चला जाने के बाद उसी शादी के मंडप में पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और मर गए। उसका प्रश्न था कि अब मैं इस आत्मग्लानि से कैसे मुक्त हूं, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी, क्या कहेंगे पिताजी को? ये बर्दाश्त नहीं हुआ, सदमा, शॉक। ऐसी बहुत सी परीक्षाएं आएगी। एक कुमार का फोन आया था जिसकी मां गुजर गई और पिता कह रहे थे कि शादी करो उस कुमार से, वो कह रहा था नहीं करूंगा। पिताजी बहुत फोर्स कर रहे थे, करना ही पड़ेगा, और लास्ट में पिता ने कहा अगर तुमने नहीं की तो मैं करूंगा। तो उसका फोन आया था हमको, क्या करूं? तो हमने कहा पिताजी से बोलो आप कर लो। लौकिक से बहुत सारे पेपर्स आ सकते, भोजन, पैसा, शादी, युक्ति से काम करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि ऐसा धक्का लग जाए कि कुछ अनर्थ ही हो जाए, बहुत युक्ति से उनको समझते हुए, और कभी भी डायरेक्ट ना नहीं करना किसी भी बात के लिए, क्या करना? पोस्टपोन, अभी तो ये कर रहा है ना, उसके बाद करूंगा, छह मास के बाद, पोस्टपोन करते जाना, ना नहीं कहना कभी भी। डायरेक्ट अगर ना कर दिया तो मुश्किल हो जाती है, युक्ति से धीरे धीरे बैलेंस रखते हुए। यदि एकदम ही विरोधी है तो अपने सारे पुरुषार्थ को गुप्त कर देना, हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं ये भी उनको पता ना चले, इतना पुरुषार्थ गुप्त कर देना, इतना अपना ज्ञान योग गुप्त कर देना। यदि जबरदस्ती करे तो पोस्टपोन कर देना किसी भी चीज के लिए। यदि बहुत मोह है उनका हम में, तो हो सकता है हमारा भी उनमें बहुत मोह है। उस दिन भी कहा था, बाइबल में लिखा है, जीसस अपने शिष्यों से कहता है, ही हु लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, ही हु लवेथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो लौकिक से बहुत प्यार करता है, मां बाप, बहन भाई, वो मेरे लायक ही नहीं है। जाओ अपने लौकिक वालों को देखो क्या करना है। विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद के आश्रम के उनके गुरु भाई बार बार घर जाते थे, बार बार माँ से मिलने जाते थे। उन्होंने उनको भी कहा था, आई डोंट वॉन्ट एम्बिगुअस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज फॉर हाफ हाउस होल्डर्स एंड हाफ मंक्स, इधर या उधर। संसार वाले विरोध तो करेंगे, परंतु हमें बहुत युक्ति से चलना है। और ये मार्ग ऐसा है कि जहां नष्टो मोहा बनना होता है। योगी और वैरागी की ऐसी जीवन में अवस्था आती है कि सब कुछ, सारा संसार और सारे रिश्तेदार उसको सांप की तरह नजर आते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसी वैराग की स्थिति चाहिए। ऊपर से सारे करो, सेवा करो, कहना मानो, परंतु अंदर से वैराग, अंदर से जरा भी किसी से कोई लगाव नहीं। आज के आज सब मर भी जाए तो कोई दुख नहीं। जन्म जन्म आत्मा मोह में फंसी रही। सबसे कमजोर आत्मा को जो बनाता है वो है मोह, अटैचमेंट। और जो आत्मा जितनी मोह से मुक्त है उतनी वो शक्तिशाली है। जो आत्मा जितनी निर्बंधन है मन से, कल की अव्यक्तवाणी है, छोड़ो तो छूटे, पकड़ा किसने है, हमने ही पकड़ के रखा है, उन्होंने नहीं पकड़ा, पकड़ हमारी भी है। केवल उनकी ही पकड़ नहीं है, पकड़ उतनी ही हमारी है। और जो आत्मा जितनी चिपकी है संसार से, व्यक्तियों से, वो नहीं उड़ सकेगी। ये मार्ग अकेले का है, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, एकला चलो रे, अकेले ही जाना है। यदि मैं सोचू कोई साथी मिल जाए तो बंधन है, इसके लिए तोड़ निभाना, उनके साथ रहना, उनका मानना, परंतु अंदर से विरक्त, अंदर से नष्ट मोह, अंदर से वीतराग, वैरागी स्थिति। अपने मन को इतना शक्तिशाली बना के रखना है, इस संसार के किसी भी व्यक्ति की हमें आवश्यकता नहीं पड़े। बाइबल में और एक जगह एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, नीदर डेथ नॉर लाइफ नॉर नेकेडनेस नॉर एनी क्रिएचर प्रेजेंट और क्रिएचर टू कम नॉर एंजल्स नॉर प्रिंसिपैलिटीज नॉर एनीवन शैल बी एबल टू सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। इस संसार में ऐसा कोई नहीं, या जो कोई होगा भविष्य में, वो नीदर डेथ नॉर लाइफ नॉर हाइट नॉर डेप्थ, ना तो ऊंचाई ना तो गहराई, ना तो मृत्यु ना तो जीवन, ना तो कोई फरिश्ता और ना ही इस संसार की कोई सत्ता, ना जो जीवित है या जन्म लेगा, हमें भगवान के प्यार से कोई जुदा नहीं कर सकता। ऐसा प्रभु प्रेम हृदय में हो, तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका, उसके प्यार के आगे संसार शूद्र है, मिथ्या है। यहां जो दिखावा है, ढोंग है, यहां जो कह रहे हैं हम तुम्हारे हैं, अपने हैं, कोई किसी का नहीं। स्वामी विवेकानंद ने और एक जगह कहा है, आई हेट दिस वर्ल्ड दिस ड्रीम दिस नाइटमेयर with its fair faces and false hearts, with its blackguardism, with its chicanery and its sanctified shopkeeping. मुझे घृणा है इस संसार से, नफरत है इस संसार से, जहां पर दुस्वप्न है, ये स्वप्नव्रत है, जो दिख रहा है वो भास मात्र है, भ्रम है, भ्रमजाल है। with its fair faces and false hearts, लोग जो दिखाई दे रहे हैं उनके जो चेहरे इतने सुंदर है, अंदर से हृदय उतने ही खोटे हैं। एक दूसरे को फंसाते हैं। प्रेम का नाम कहते हैं पर अंदर से झूठ है। शॉपकीपिंग चालू है, सब कुछ बाजार है यहां पर, सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग। ऊपर से लेप पोत लगा हुआ है बस प्यूरिटी का, बाकी अंदर से जो भी संबंध है काम ही उसके अंदर है और कुछ नहीं। लौकिक में रहना, लौकिक से बहुत सारे ढेर सारे पेपर आएंगे, बीमारियों के, मृत्यु के, शादी के, मोह के, और उसमें आत्मा हिल जाती है। उस दिन भी सुनाया था, एक मां जो ज्ञान में चलती है बहुत पक्की, और एक दिन अपने बेटे को भी उसने ज्ञान में लाया, बेटा भी बहुत पक्का हो गया ज्ञान में, परंतु बाद में माता ने कहा मुझे बहू चाहिए, जबकि उसी ने ज्ञान में लाया। कुमार ने कहा बिल्कुल नहीं, माता जी ने कहा तुमको करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कौन चाहिए, बहू। तो फिर बेटे ने जबरदस्ती शादी कर ली और बहू आ गई, परंतु बहू ऐसी खतरनाक आई कि हर दिन झगड़े हैं, तेज तर्राक, हर दिन झगड़े, रोज झगड़े घर में। तो बेटे ने कहा मां से, देखा तुमने कहा था ना शादी करो, यह हाल हुआ। तो मां ने कहा, कहा तो मैंने था पर की तो तुमने ना। की मतलब तुम्हारी भी इच्छा होगी, साकार मुरली के महावाक्य है। बच्चे बाप से कहते हैं बाबा, मां बाप कहते हैं शादी करे, क्या करे, बाप कहते हैं सिर भी कट जाए तो श्रीमत को ना छोड़ना, स्वर्ग में उच्च पद पाओगे। सुना ये वाक्य आएगा, साकार मुरली का वाक्य है, मुरलियां रिपीट हो रही है पांच वर्ष में, जब आएगा तो नोट करके रख देना। बाप कहते हैं सिर कट जाए तो भी परवाह नहीं, भोजन न मिले तो भी परवाह नहीं, मरोगे नहीं। वी लीव, वी मूव एंड वी हैव अवर बीइंग इन हिम, हम जी रहे हैं, हम चल रहे हैं उसमें, उसकी छत्रछाया में। इसलिए लौकिक से जो बनाए उन्हें पोस्टपोन करते जाना। महावीर ने क्या किया था, वर्धमान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक स्थापक, वैराग्य आ गया था संसार से, परंतु मां ने कहा बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड, तुम छोड़ के नहीं जाओगे, जब तक मैं जिंदा हूं तुम संन्यास नहीं ले सकते। तो उन्होंने झगड़ा नहीं किया, वेट किया, स्टॉप। एक दिन मां ने शरीर छोड़ दिया, तब तक वेट किया और जाने निकले, परंतु भैया और भाभी उन्होंने कहां जा रहे हो, इधर रुको, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे तुमको, घर का काम सब कुछ तुमको करना है, ऐसे थोड़ी ना जाके संन्यास ले लोगे। तो वो रुके, परंतु अब उनका जो रुकना था वो जैसे जीवंत मृत्यु है पर नहीं है, उनके बीच में रह रहा है परंतु उनके बीच में ही नहीं है। तो भाई ने भी एक दिन कहा ऐसा से क्या मतलब, इससे तो तुम ना के बराबर, चले जाओ तो अच्छा है, और वो चले गए, मार्ग खुल गया। हम कितना अटैच है, सब कुछ इस पर है, हम ही अटैच है, बाकी ऊपर की परिस्थितियां जो की है सब कुछ ऊपर ऊपर है, अंदर में गहरे में अटैचमेंट है। अपने को उस अटैचमेंट से मुक्त करना है, जिसे विश्व के कार्य के लिए निकलना है उसे तो छोटे घर को छोड़ना ही होगा, बड़े को अपना घर बनाना है। विश्व चीमा जे घर, ये सारा संसार मेरा घर है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसको बहुतों को सुख देना है और बहुतों का हित करना है उसे छोटे सारे घरों को व्यक्तियों को छोड़ना पड़ेगा। स्थूल नहीं मन से सूक्ष्म, तो सबसे पहला पेपर जो आएगा वो है लौकिक से, और ऐसा ऐसा आएगा जो हमने सोचा नहीं था, एकदम आउट ऑफ सिलेबस। आने के बाद कहेंगे बाबा ने तो इसके विषय में कभी कुछ कहा ही नहीं, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। आएगा, पार करके आगे बढ़ जाएगा। दूसरा पेपर है साथियों से, मित्रों से, दोस्तों से, फ्रेंड से। कौन सा पेपर आएगा? धोखा, जिसको अपना समझा और जिसे सब कुछ बता दिया उससे ही धोखा हो गया एक दिन। साथी, जिसे समझा था ये मदद करेगा, बिल्कुल उसी वक्त उसने मदद नहीं की। जिसको हमने बहुत सहयोग दिया था परंतु उसने बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया। जिससे बहुत सारी अपेक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थी, टाइम पर कुछ नहीं। संसार में आज तक जो सबसे बड़े शत्रु हुए हैं वो वही लोग थे जो पहले दोस्त थे। दूर वाले कम शत्रु होते हैं। एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, एक लेखक ने, गॉड ओ गॉड सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, आई कैन सेव माई सेल्फ फ्रॉम माई एनिमीज। मैं अपने शत्रुओं से अपने आप को बचा सकता हूं पर मेरे दोस्तों से मुझे बचाना, क्योंकि जो दोस्त है वो कब दुश्मन बन जाए पता नहीं, और जो दुश्मन है वो दोस्त तो बन सकते हैं पता नहीं। तो कुछ पेपर साथियों के द्वारा आएगी और वो पेपर ऐसे होंगे कि आत्मा को शायद हिला देंगे। इसके लिए नो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी, एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। कौन सी? नो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। किसी से कुछ भी अपेक्षाएं नहीं, कोई मदद करे, सहारा दे, जितना हो सके कुमार जीवन अर्थात निराधार। कोई आधार नहीं, किसी का आधार नहीं, न व्यक्ति का, न वस्तु का, न वैभव का, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है। बार बार मन में कहते रहना ये सब स्वप्नव्रत है, माया नहीं है, दुखमयी है, और अपने आप को उस निराधार शक्तिशाली स्थिति में स्थित रखना। तो दूसरा पेपर आएगा साथियों से, ऐसी कुछ कुछ बातें होगी जो शायद चोट कर जाएगी हृदय में, गहराई में। कुछ कुछ पेपर उनके स्वभाव की वजह से, उनके बोल की वजह से, उनके संस्कारों की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से, कुछ कुछ पेपर उनके न एडजस्ट करने की वजह से। हम एडजस्ट करते हैं परंतु वो नहीं करते। वो साथी हमारे कमरे में रहने वाला हमारा पार्टनर हो सकता है, उसको लाइट चालू चाहिए हमको बंद चाहिए, उसको खिड़की चालू चाहिए हमको बंद चाहिए, वो छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो सकती है। हमेशा हम एडजस्ट करते हैं, वो कभी एडजस्ट नहीं करता। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, अपने आसपास के पत्तों को भी समझो क्या है। अपने आसपास के पत्तों को समझना है अर्थात हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका स्वभाव क्या है। यदि इसको नहीं समझा तो हम डिस्टर्ब होते रहेंगे बार बार। जब पता चल गया इसका स्वभाव ही ऐसा है तो फिर हमारा डिस्टर्ब होना कम हो जाएगा, रहम का भाव जागेगा, नहीं तो दुखी होना चालू रहेगा। साथियों को समझना, उनके स्वभाव को समझना, उनकी कमजोरियों को भी समझ लेना, विशेषताओं को भी समझ लेना और कमजोरियों को भी, दोनों चीजों को स्टडी चाहिए। हाँ, हमें कमजोरी देखनी नहीं है परंतु पता चाहिए कि इसमें यह कमजोरी है और उसकी उस कमजोरी की वजह से हम दुखी हो रहे हैं, प्रभावित हो जाते हैं। हमें यह पता चाहिए कि सामने वाला अचानक कभी भी इसको क्रोध आ सकता है, अभी नहीं आ रहा है पर अगर ऐसी चीज हो गई तो एकदम से क्रोधी हो जाएगा, फिर कुछ नहीं देखेगा। एक साधुओं की मीटिंग होती है जिसमें बहुत सारे सन्यासी होते हैं, अभी बूढ़े हो गए हैं, प्रवचन करते हैं अलग अलग जगह पर। एक बार उनका संत सम्मेलन हुआ, उसमें सभी ने बहुत धुआंधार भाषण दिया और भाषण देने के बाद कमरे में आए रेस्ट रूम, तो मित्र ही थे सारे, अब एक दूसरे से क्या छुपाना। पहले सन्यासी ने कहा, साधु ने, मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पर बहुत भाषण दिए पर क्या करूं, मैं खुद ब्रह्मचर्य से का पालन नहीं कर पाता। आपसी बातें चल रही है, दुनिया के सामने कुछ और, अब तो साथी है, फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल, इनर सर्कल। दूसरे ने कहा, मैं अपने प्रवचन में हमेशा कहता हूं बिल्कुल धन से दूर रहना चाहिए पर मुझे खुद नींद नहीं आती जब तक मैं नोट नहीं गिनता। तीसरे ने कहा, मैं हमेशा कहता रहता हूं अपने प्रवचन में संसार के पद पोजीशन से लगाव दूर होना चाहिए पर मैं क्या करूं, जब तक मैं अभी यहां जिस पद पर हूं और इससे आगे ना बढ़ जाऊं मुझे चैन नहीं आता है। तो आपसी इनर सर्कल में साधु संत महात्मा लोग अपने दिल की बातें कह रहे थे एक दूसरे से, तो एक दूसरा उठा और भागने लगा। तो उसने कहा, अरे तुम क्यों भाग रहे हो? वो कहता है, मेरी भी एक कमजोरी है, जब तक मैं इधर की बात उधर ना बता दू मुझे चैन नहीं आता है और इसी के मेरे बारे में मैं हमेशा प्रवचन करता हूं कि व्यक्ति को यहां की बात उधर नहीं बतानी चाहिए पर क्या करो, सबसे बड़ी मेरी यही कमजोरी है। अब जब तक आपने जो ये बातें बताई, जब तक ये सोशल मीडिया में जाकर ब्रॉडकास्ट ना कर दू, व्हाट्सएप में सबको भेज ना दू, तब तक चैन नहीं आएगा। तो किसका स्वभाव कैसा, किसका कैसा, कोई दिखाता कुछ और है और अंदर है कुछ और रहता हमारे पास, हमें पता है परंतु दूसरा संसार वाले कुछ और समझते हैं। वैरायटी आत्मा है, इसमें एक एटीट्यूड ऐसा है कि एंजॉय करना, हाँ कितनी अच्छी वैरायटी आत्मा है। सतयुग में ये सब होंगे पर दुलाई होकर आएंगे ऊपर से इसलिए ये नहीं उड़ेंगे वापस, इतनी वैरायटी की आत्माएं कहां मिलेगी? हाँ, इतनी वैरायटी आत्माएं वहां नहीं मिलेगी, अभी है यहां पर। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अपने विचित्र संस्कार है, चार दिन उसके पास रहो तो पता चलता है, ऊपर ऊपर से मिल लिए और हो गया तब पता नहीं चलता है इतना। ज्यादा समय किसी के साथ रहो तो सारे अवगुण दिखने लगते हैं। फिर और एक चीज है, किसी के इतने समीप नहीं चले जाना कि फिर उसकी अवगुणी दिखाई देने लगे, और विशेष रूप से जिसको हम बहुत बड़ा मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, प्रेरणा मानते हैं, आदर्श मानते हैं, कोई भाई कोई बहन, उससे तो सबसे ज्यादा दूर रहना, क्योंकि उससे अगर ज्यादा दोस्ती की तो धीरे धीरे उसके अवगुण दिखाई देने लगेंगे और उसकी जो छवि मन में थी और उसको देखकर हम अपना पुरुषार्थ कर रहे थे वो धूमिल हो जाएगी, पुरुषार्थ रुक जाएगा। दो कन्याएं थी, वो एक लेखक को पढ़ती थी, हमेशा उसकी लेख, और इतनी प्रभावित हो गई उस लेखक से कि एक दिन उस लेखक से मिलने गई और उस लेखक ने उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया, चलो यहां से भागो यहां से, उनकी पूरी भावनाएं नष्ट हो गई। अब उसके लेख पढ़ पढ़ के उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया, पर एक दिन जब उस लेखक से मिलने गई तो उस लेखक ने अशिष्ट व्यवहार किया, बाद में उसको पढ़ना ही उन्होंने बंद कर दिया, जिसके प्रति मन में बहुत आदर है वो आदर कायम रखे, उसके लिए भी उस व्यक्ति से भी थोड़ी सी दूरी चाहिए, डिस्टेंस। तो दूसरा पेपर आएगा साथियों से, वो साथी ज्ञानी हो सकते हैं अज्ञानी हो सकते हैं, वो साथी पास्ट जीवन के हो सकते हैं। सुबह भट्टी में भी प्रश्न पूछा था, सुबह या शाम, यदि कोई पुराना दोस्त आ जाए 10 साल के बाद और हमको कहे चलो अभी मूवी जाके आते हैं, और इस बीच में हम पिछले 5 साल से ज्ञान में आ गए हैं और उसको पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, उसका दिल तोड़ देंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, युक्ति रचनी होगी जिससे उसको भी पता चल जाए कि अब हम वो नहीं रहे जो तुम मुझे पहले जैसे जानते थे, वो जो कॉलेज लाइफ वाला मैं हूं अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं दूसरा हूं, अब मैं बदल चुका हूं, अब मैं इस संस्था से जुड़ गया हूं, उसको क्लियर कट बता दो और यहां पर ऐसे ऐसे नियम है और मैं इन नियमों का पालन करता हूं। तो कुछ साथी जो पुराने छूट गए थे वो आएंगे, उनसे पेपर। कुछ साथी ब्राह्मण आत्माएं, कुछ साथी अज्ञानी आत्माएं, साथियों से पेपर। तीसरा पेपर है बड़ों से पेपर, वो बड़े ज्ञान में चलने वाले हो सकते हैं, वो बड़े बाहर का कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो भी बड़ा है उम्र में, अनुभव में, अध्यात्म में, तीन चीजें, एज, एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअलिटी, इन तीन चीजों में जो बड़ा है उसी से पेपर, जिसको गुरु माना था उसी से पेपर, जिसको रोल मॉडल समझा था उसी से पेपर, और वो भी आएंगे और उसके रूप भी अलग अलग होंगे और वो ऐसे होंगे कि कभी कभी सहन नहीं कर सकेंगे झूठा आरोप, अगर कोई ये कह दे कि ये वस्तु चोरी हुई है और तुमने ली है तो कुछ भी हो सकता है। जो व्यक्ति इन सभी बातों के लिए तैयार नहीं और ये सोचते ये सब कभी नहीं होगा, और जब होता है ऐसे घायल हो जाते हैं कि ज्ञान ही छोड़कर चले जाते हैं। हमें याद है एक भाई 1200 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए बाबा से मिलने आया, रिकॉर्ड किया, उसका सम्मान हुआ था शांतिवन में, दादी ने माला वगैरह पहना दी, और वो आते समय बाबा का संदेश देते देते आया साइकिल चलाते हुए, क्योंकि वो एथलीट था, स्पोर्ट्स का व्यक्ति था, ज्ञान में आ गया था, साइकिल चलाते चलाते आया, और बाद में हमको एक दिन पता चला वो अब ज्ञान में ही नहीं है, डिस्टर्ब हो गया, कोई ऐसी चीज देख ली या हो गई उसके साथ कि ज्ञान ही छोड़ दिया, कितना नशा उसको था, बाबा का संदेश देते देते 1200 किलोमीटर साइकिल चलाते चलाते भगवान से मिलने गया, 1 महीना लगा उसको पहुंचते पहुंचते मधुबन, और बाद में ज्ञान छोड़ दिया। न हो ये सारी बातें तो बहुत अच्छा, पर जब हो उसके लिए प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मानसिक तैयारी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ पेपर बड़ों से भी आएंगे और वो जब आएंगे केवल एक ही चीज है, हमारी अपनी लाइन बाबा के साथ क्लियर चाहिए। सत्य हम कह दे, सिद्ध और जिद करने की आवश्यकता नहीं आरोप लगने पर, चुपचाप कह दे अपनी बात रख देना शांत भाव से और चुप हो जाना, फिर उसके बाद जो होगा वो होगा। तो तीसरा पेपर है बड़ों से पेपर, चौथा पेपर है बाहर वालों से पेपर या ऑफिस वालों से पेपर, ऑफिस के साथी जूनियर्स बॉस या फिर बाहर वाले पुलिस कुछ भी, बाहर के जो भी लोग हैं। जैसे अभी एक हमने एक्टिविटी की, कोई क्रोध में आ गया, झगड़ाई करने आ गया और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे? वो समझने को ही तैयार नहीं होता। ऐसा एक बार हुआ है ओम शांति भवन में, कोई कॉन्फ्रेंस था और जो एक व्यक्ति जो स्टेज पर गया बोलने के लिए, वो ओम शांति भवन की स्टेज पर ही, ओम शांति भवन की स्टेज पर ब्रह्मा कुमारी की जबरदस्त ग्लानी करने लगा। जगदीश भाई जी सभा में बैठे थे, बहुत ग्लानी करने लगा। अब उसको कौन रोकेगा? कोई स्टेज पर चला जाए माइक सामने और बोलना चालू तो उसको बोलेंगे रुको, क्योंकि सभा में तो बाहर के लोग भी बैठे हैं, सुनना ही पड़ेगा। तो उसने धुआंधार भाषण दिया और जगदीश भाई जी थे, सभी जानते हैं जगदीश भाई जी का। तो जगदीश भाई ने क्या किया होगा? जगदीश भाई ने कुछ भी नहीं कहा। जब वो स्टेज के उतर से उतर कर आए तो उनको एक गले लगे बस, वो ठंडा हो गया व्यक्ति, कुछ नहीं किया, हाँ ही गले लग गया, बहुत बढ़िया, अच्छा किया जो किया। तो बाहर वालों से भी पेपर आएंगे, कोर्ट पुलिस ऑफिसर्स इनकम टैक्स, दुकानदार बिजनेसमैन, किसी से भी पेपर आ सकता है, बाहर वाले जितने हैं वो सारे, उन सब से कुछ ना कुछ पेपर आएगा। उस समय भी अचल डोल रहना है और वो सारे अज्ञानी है जो कुछ नहीं जानते ब्रह्मा कुमारी का बाबा के बारे में, उनसे डील करना, उन्हें आप कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी एक ही अस्त्र होता है मौन, मौन से ही उन्हें जीता जा सकता है। यदि उनके साथ हम लड़ने लगे तो कभी नहीं जीतेंगे, क्योंकि हमारा भी अहंकार प्रकट हो जाएगा, ज्ञान रह गया बाजू में और हम लड़ने लगे। अंग्रेजी में कहावत है, इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर, अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर, और हम यहां पर अपने अहंकार के लिए लड़ना चालू कर देते हैं, ये भूल ही जाते हैं कि मैं किसी विशाल संगठन से जुड़ी हुई आत्मा हूं। हम भी अहंकारी बन जाते हैं, वो हम पर आरोप लगाता है, हम उस पर आरोप लगाते हैं, यहां तक कि कभी कभी हिंसा भी कर लेते हैं। कुमार, उसने मारा तो हमने भी मारा, यहां बाबा तो इतनी सूक्ष्म डबल अहिंसक की बातें मुरली में आती, वो सब रहेगी एक तरफ, उसको पकड़ के पीटना चालू, ये भी हुआ है। तो चौथा पेपर है बाहर वालों से, उसको भी कैसे निपटा जाए, कैसे हैंडल किया जाए, उसकी मन ही मन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। जैसे अभी एक प्रैक्टिस थी एक्टिंग की, क्या करें, वैसे और भी कुछ हो सकता है। पांचवा पेपर बीमारी वो सबसे बड़ा बेहतर है। बीमारी आने पर कोई तो चाहिए, कोई साथी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, कोई बहन हो तो बहुत ही अच्छा, कोई दोस्त हो तो बहुत अच्छा, जो केयर करे, भोजन विजन लाके दे। सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा कुमार शादी करते हैं एक ही कारण है, भोजन। कब तक भोजन अकेले बनाते रहेंगे? रोज रोज भोजन बनाओ, थक जाते हैं, शरीर की बीमारी आएगी। उसके लिए सबसे पहले तो उसको आने नहीं देना, स्वयं को स्वस्थ रखना, एक्सरसाइज, वॉकिंग, संयमित आहार, ये सारी चीजें। और जो कुमार बार बार बीमार पड़ते रहते, कभी लूज मोशन, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, और खाने की गड़बड़ करते ही रहते। ब्रह्मा भोजन खाया, दूसरे दिन कुछ हुआ, अपचन, गैस, एसिडिटी, अनिद्रा, इंसोमनिया, नींद नहीं आना, थकान, डिप्रेशन, कुछ ना कुछ चलता है। सबसे पहले तो स्वयं को तंदुरुस्त रखना, स्वस्थ रखना, एक। दूसरा, यदि बीमारी आ भी जाए तो उसमें फिर क्या क्या किया जाए उस बीमारी में, उसकी भी हमारे पास प्लानिंग है। और बाबा हमेशा कहते हैं कुमारों का अपना एक संगठन हो। हमने एक सेंटर पर हमने देखा, वहां पर पांडव भवन बना के रखा है कुमारों ने, और सारे कुमार एक साथ रहते हैं, बाहर है सेंटर के नजदीक, और सभी जॉब करने वाले हैं। उसमें हर एक के अपने अपने कमरे हैं, कभी कभी साथ में मिलकर भोजन बनाते, कभी कभी अपना अपना बनाते। नाम दिया है पांडव भवन। और यदि उनमें से कोई एक बीमार पड़ता है तो सारे मिलकर उसकी मदद करते हैं, ताकि उसको ऐसा एहसास ही ना हो कि मैं अकेला हूं और मेरा कोई नहीं है। कोई टिफिन पहुंचाएगा सुबह का, दोपहर का, सब कुछ करेंगे उसके लिए। ऐसा संगठन कुमारों का, एक बीमार पड़े तो सारे उसको मदद करें, नहीं तो फिर उसको लगता है कोई ना कोई मुझे चाहिए साथी। और परिस्थितियां ऐसी आती है कि वो एक से दो, और दो से तीन, और तीन से चार, धीरे धीरे हो ही जाता है। तो बीमारी आएगी, स्टेबल रखना है बीमारियों में खुद को। अगला है प्रकृति, छठवां प्रकृति का पेपर, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, अचानक आग, अचानक कोई बहुत बड़ा नुकसान, प्रकृति की तरफ से आए हुए सभी पेपर, उसमें व्यक्ति असहाय महसूस करता है अपने आप को, कुछ नहीं कर सकता। परंतु जब प्रकृति का पेपर आए, वहां पर स्वयं को स्थिर रखना है, बजाय इसके कि व्यर्थ डिस्कशन में चले जाए, या आज भूकंप आया, वहां कल भूकंप आया, बस उसी का डिस्कशन दिन भर चालू है। स्थिति बनाना छोड़ दिया, उसी का डिस्कशन चालू है, सकाश देना छोड़ दिया और कुछ और ही कर रहे हैं। प्रकृति भी पेपर लेगी, उस प्रकृति के पेपर के लिए जो लास्ट में आएंगे, अपने को अभी से तैयार करके रखना है, नहीं तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे भयंकर। जब आपदा आती है तब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। हम लोगों को याद है जब 2013 में उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी, तो हॉस्पिटल की तरफ से हम टीम आई थी हम लोगों की यहाँ पर उत्तराखंड में, तो हमने देखा कि दो रूप देखे मनुष्यता के। एक तो वो लोग आ गए दूर दूर से मदद करने के लिए, कितनी सारी संस्थाएं आ गई, कुछ कुछ तो ऐसी संस्थाएं थी उनका नाम भी उन्होंने नहीं लिखा था, और निस्वार्थ सेवा कर रही है, इतनी सेवा कर रही है, कितने पंजाब से पूरे लंगर लगे हुए हैं, भोजन फ्री में दिया जा रहा है। एक तो मनुष्यता का ये रूप, जब त्रासदी होती है तो रहम दिल बनकर बहुत मदद करते हैं, परंतु दूसरा भी एक रूप देखा, यहां से बहुत ऊपर ऊपर जो एरियाज थे जहां के लोग नीचे नहीं आ रहे थे, हेलीपैड हेलीकॉप्टर जा रहे थे उनको लेके आ रहे थे, आर्मी सीआरपीएफ एनडीआरएफ सारे लोग टीम मिलकर सेवा कर रही थी, तो उनको ऐसे कुछ दो लोग दिखे बीच में, तो उनको कहा चलो, साधु थे शायद, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इधर ही रहेंगे, तो उनको पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ, और बाद में देखा तो उनकी दोनों झोलियों में जितने लोग मरे हुए थे वहां पर, किसी किसी का हाथ काटकर तोड़कर बैंगन उनके क्या कहते हैं बैंगल्स ज्वेलरीज सब कुछ छीन छीन के लेके जा रहे थे। ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि कोई कोई तो एक गिलास पानी 100-200 रुपए में बेच रहे थे गांव में। एक तरफ लोगों की यह हालत और दूसरी तरफ जो बच गए वो मुर्दों को मार पकड़ पकड़ के उनके सारी गहने निकाल निकाल के भाग रहे थे। एक तो ऐसे युगल मिले कि जिनके पास इतनी बड़ी बैग मिली, सारा उसमें माल भरा हुआ था, पकड़े गए, डेड बॉडीज आ रहे उसके पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं, भाग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चोर भी बहुत आ गए, चोरी करने वाले बहुत हाई प्राइसेस में चीजें बेच रहे थे ऊपर, जहां तक लोग जो रेस्क्यूअर पहुंच नहीं पा रही थी टीम। तो त्रासदी के समय बुद्धि पलट जाती है व्यक्ति की, क्या करना है समझ में नहीं आता है, जैसे सारे लोग करते हैं वैसे सब करते हैं, मॉब मेंटालिटी आ जाती है, स्थिर नहीं रह पाता। एक तो खुद स्थिर रहना और दूसरों को स्थिर करना, पर यहां तो कुछ और ही होता है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, पार्टीशन, जो लोग मंदिर में जाते थे मस्जिद में जाते थे, अकेले अगर होते तो कुछ ना करते, पर सारी मॉब के साथ पूरे लोगों के साथ सब ने उन्होंने भी घरों को आग लगा दी भीड़ के साथ। तो प्रकृति पेपर लेगी और जब लेगी तो हमें स्थिर रहना है, उसकी तैयारी अभी से, और उसकी एक तैयारी है सुबह और शाम प्रकृति को सकाश देना। क्या करना? प्रकृति को सकाश देना। अगला पेपर है आर्थिक पेपर, फाइनेंशियल पेपर। हर एक को जो भी जॉब करते हैं या लौकिक में है या सेवा केंद्र पर नहीं है, वो सभी अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखे, किसी के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाने की कभी भी नौबत ना आए, भीख नहीं मांगनी है कभी भी किसी से पैसों के लिए। पैसे दे दो घरों में या मित्रों से या किसी और से, अपने पैरों पर खड़ा रहना है। कम पैसे मिले चलेंगे, परंतु भीख पैसों की कभी नहीं मांगनी है, क्योंकि वो जबरदस्त एक बंधन है। और यदि किसी से पैसे लिए भी तुरंत वापस कर देना, यदि ऐसी विकट अवस्था में लेना पड़े तुरंत वापस, जितना हो सके इंडिपेंडेंट। और ये भी पेपर आएगा, यज्ञ में जब पेपर आया बेगरी पार्ट, कितने लोग छोड़ के चले गए, बाबा को कितनों ने कहा बाबा हम मुंबई जा रहे इधर जा रहे कमाई करके फिर आएंगे, बाबा ने कहा जरूरत नहीं है, भगवान का यज्ञ अपने आप होगा, फिर भी वो गए, और जो गए वो वापस कभी नहीं आए, वहीं बस गए। तो यज्ञ में अगर पेपर है तो हमारे जीवन में भी आएगा, फाइनेंशियल पेपर। आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें भी हम अचल अडोल रहे उस पेपर में। और लास्ट पेपर है जो सबसे कठोर और कठिन पेपर है, पवित्रता पर कलंक। पवित्रता पर कलंक, और ये पेपर ब्राह्मणों के द्वारा आएगा, झूठे आरोप, किसी ना किसी के साथ जोड़ देना या कुछ करना या कुछ करना, ये सब होते रहता है। जिसकी पवित्रता अचल अडोल है, जिसकी पवित्रता जितनी पक्की है, उनको इन किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो अंदर से गड़बड़ है, उसको डर, भय, चिंता, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, डिफेंसिव, जिद, सिद्ध कुछ ना कुछ करेगा। और ये भी होगा, इसके लिए ब्रह्मचर्य की और पवित्रता की अपनी धारणा को रोज मजबूत करना है, रोज प्रतिज्ञा करनी है बाबा से। तो इतनी है, कुछ पेपर से लौकिक से पेपर, दूसरा साथियों से पेपर, तीसरा बड़ों से पेपर, चौथा बाहर वालों से पेपर, पांचवा बीमारी, छठवा प्रकृति, सातवा फाइनेंशियल पेपर, आर्थिक पेपर, सभी पेपर्स में अचल अडोल रहना। ये तो कुछ ही गिना है, लिस्ट बहुत बड़ी है, ये कुछ बताई बातें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपने आप को ज्ञान और योग में बिजी रखना, ज्ञान के मनन में, ज्ञान के चिंतन में। रोज एक तीव्र पुरुषार्थ की क्लास सुननी है, रोज दादियों की, वरिष्ठ भाइयों की एक क्लास सुनना। और खाली सुनना नहीं, क्लास सुनते हो, क्लास सुन रहे, पॉज, नोट डाउन करो पॉइंट्स, फिर पॉज, फिर पॉइंट्स नोट डाउन करो, फिर क्लास बाजू में 10 पॉइंट लिख लिए, अब इनको रिवाइज करो, जेब में रख दो, दोपहर में जेब से निकालो, फिर एक बार पढ़ लो, फिर रख दो, शाम को एक बार फिर निकालो पढ़ लो, रात को एक बार फिर निकालो पढ़ लो, कौन सी नई पॉइंट है और कौन सी पावरफुल पॉइंट है, रिवाइज करते रहना। एक दिन में एक क्लास पर मास्टरी करनी, एवरी डे वन क्लास, एवरी डे अव्यक्त मुरली का थोड़ा सा चिंतन मनन, और हो सके तो ऐसा कुमारों का अपना संगठन बनाना है। संगठन के लिए दो ही लोगों की आवश्यकता है मिनिमम, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। और जहां हम रहते हैं, हो सके तो रात को सोने से पहले वो दो लोग आपस में ज्ञान की चर्चा करें और फिर सोए, अगर साथ में रहते हैं। अगर दूर रहते तो फोन से कर सकते हैं कि आज के मुरली में, वरदान में ऐसा था, स्लोगन में ये था। 10 मिनट्स ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, समझ हो दे तो बहुत अच्छा। घर वाले सभी ज्ञान में है तो उनके साथ, नहीं है तो किसी और के साथ, परंतु करना चाहिए। और एक चीज, अगर हो सके तो मास में सभी एक बार मिले और भट्टी करें। बहन जी इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हर मास में एक बार हम संडे को 2 घंटे के लिए आए क्या, जो जैसे आ जाए वैसे 2 घंटे यहां पर आए। और कुछ कोई है क्लास कराने वाला तो ठीक, नहीं तो बैठकर तपस्या करे। संगठन में बहुत पावर है। तो ऐसे इस कुमार जीवन में, के इस अग्नि पथ में बहुत पेपर आएंगे, स्वयं को तैयार रखना है। ओम शांति।